हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तारा जिस तरह से मन ही मन में मुस्कुराने लगी थी, तो कहीं ना कहीं मल्लिका को अब तारा परी पर शक होने लगा था। और फिर आखिरकार वो उसे कुछ कह तो नहीं सकती थी, क्योंकि तारा उसकी बॉस भी थी। लेकिन इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास हो गया था कि जरूर ये लड़की भले ही इंसान हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा तेज और चालाक है। वही तारा परी मल्लिका को अपनी ओर इस तरह से देखता हुआ देखकर मुस्कुराने लगी थी और फिर उसके पास जाकर कहने लगी थी, क्या हुआ मल्लिका, कुछ कहना चाहती हो क्या? जैसे ही तारा परी ने ये कहा, मल्लिका अब तो और भी ज्यादा चिढ़ गई थी। लेकिन वो फिलहाल उसे कुछ नहीं कह सकती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी, अगर उसने उसे कुछ भी कहा तो उसका पूरा भेद यहाँ सबके इंसानों के सामने खुल सकता था, क्योंकि मल्लिका को तो इस वक्त तारा परी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो तो सीधे सीधे उसकी जान लेना चाहती थी। लेकिन अब जैसे ही सामने से तारा ने पूछा कि तुम कुछ कहना चाहती हो, तो वो शक पकासी गई थी और कहने लगी थी, नहीं मैडम, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तभी तारा मन ही मन में हंसने लगी थी और कहने लगी थी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ काला साया कि इस वक्त तुम्हारे दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा होगा कि तुम्हारा बस चले तो तुम मेरी जान ले लो। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज मैं तुम लोगों का काम खत्म करके ही रहूंगी, कहीं ना कहीं तारा परी ने मन ही मन में अपना इरादा मजबूत करते हुए कहा था। वेल, जल्दी ही अमन ने बगीचे में जाकर दादा महाराज के गाइडेंस में एक कड़ा तप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे अब हर हाल में इस बात के बारे में पता लगाना था कि आखिरकार वो दानव आया कहाँ से था। और उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, देखते ही देखते वो दानव किस तरह से पैदा हुआ था और किस तरह से उसे उसके करीब भेजा जा रहा था, सारी चीज उसकी आंखों के सामने थी। अब जैसे ही अमन ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख होने लगी थीं। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इन सबके पीछे अमित होगा, जो कि उसके बचपन से साथ था और उसका बचपन का दोस्त था। कहीं ना कहीं ये सच सामने आने के बाद अमन का दिल काफी ज्यादा भारी सा हो गया था, क्योंकि आज तक उसने अगर किसी पर सबसे ज्यादा यकीन किया था तो सिर्फ और सिर्फ अमित पर किया था। अमित को वो बचपन से जानता था, लेकिन यूं इस तरह से अमित काली शक्तियों का मालिक निकलेगा, इतना ही नहीं वो काली शक्तियों के महागुरु का दाया हाथ निकलेगा, इसके बारे में तो अमन को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। जल्दी ही उसने ये बात अपने दादा महाराज को बता दी थी और कहा था कि वो बताएं कि उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तभी दादा महाराज अमन की ओर देखकर कहने लगे थे, तुम एक जिन महाराज हो, तुम उसके दोस्त बाद में हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ बचपन से रह रहा है, लेकिन तुम्हें अब जिन महाराज का फर्ज निभाना चाहिए। जाओ और जाकर उसे खत्म कर दो। जैसे ही दादा महाराज ने ये कहा, अमन काफी हैरान हो गया, लेकिन दादा महाराज जो कह रहे थे उसे करना ही था, इसीलिए जल्दी ही अमन अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक बार फिर अपने बंगले पर पहुंच चुका था। और जैसे ही वो वहां गया, इस बार वो अमित को घूर कर देखने लगा था। साथ ही साथ उसकी नजरों में अब वो बात भी साफ हो गई थी, जब उसे अमित ने बार में ले जाकर ड्रिंक कराई थी और उसे मल्लिका के साथ सोने पर मजबूर किया था। कहीं ना कहीं सारा सच अब अमन की आंखों के सामने था और अमन अब इतनी आसानी से अमित को जाने नहीं देना चाहता था। तो ठीक उसी वक्त जब धीरे धीरे करके सभी मेहमान वहां से जाना शुरू हो गए, तब अपने घर के गार्डन में ही अमन ने अमित को रोक लिया था और कहने लगा था, कहाँ जा रहे हो तुम? अब जैसे ही अमन ने अमित से ये कहा, अमित हैरान था और कहने लगा था, व्हाट यू मीन, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं अंदर जा रहा हूँ यार, आज संगीत के फंक्शन ने मुझे बहुत ही ज्यादा थका दिया है, तो बस मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही अमित ने ये कहा, अमन कहने लगा था, तुम्हें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अब हमेशा हमेशा के लिए आराम और सुकून की नींद सुलाने जा रहा हूँ। अब जैसे ही अचानक से अमन ने ये कहा, तारा मुस्कुराने लगी थी। वहीं रीत परी ने भी राहत की सांस ली थी और सोनल परी ने मन में तारा परी से कहा था, लगता है तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, अमन के सामने अमित का काला सच आ गया है। तभी तारा ने भी सोनल और रीत परी दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था, तुम दोनों के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। फाइनली अब अमन के सर से ही अमित के नाम की मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। अब तारा परी ने जल्दी से सोनल परी से कहा था, सोनम, जितने भी बचे हुए बाकी के मेहमान हैं, तुम जल्द से जल्द सबको यहाँ से भेज दो और खासकर अपने उस अक्षत को, वो देखो वो अभी भी तुम्हें ही घूर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक बड़ा गहरा युद्ध होने वाला है। जैसे ही तारा परी ने ये कहा, सोनल ने जल्दी ही उसकी बात मान ली थी और वो सभी गेस्ट को स्पेशली खुद बाहर छोड़ने के लिए जा रही थी, ताकि किसी को वहां पर किसी तरह का कोई शक ना हो। वहीं अमित के चेहरे का रंग बदलने लगा था और वो कहने लगा था, तो कहना क्या चाहता है तू मुझे कैसी नींद सुलाना चाहता है? क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? जैसे ही अमित ने ये कहा, अमन उसकी ओर देखने लगा था और कहने लगा था, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो। उस काली शक्तियों के महागुरु ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझदार बना दिया है। अब जैसे ही अमन ने सीधे सीधे ये कहा, अब तो अमित के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। तभी अमरिंद्र जी अपने माथे पर चिंता की लकीरें के साथ आगे आए थे और कहने लगे थे, आखिरकार हुआ क्या है? तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? हाँ चलो, संगीत का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, कल धरा और अमित की शादी होगी, तो मुझे लगता है तुम सबको आराम करना चाहिए। तभी अचानक अमन गुस्से से अपने पिता की ओर देखते हुए कहने लगा था, यहाँ कोई शादीवादी नहीं होगी, और रही बात अमित की, अमित अब जिंदा नहीं रहेगा। अब जैसे ही अमन ने ये कहा, अमरेंद्र जी देश में आ गए थे और सीधा अमन के सामने जाकर खड़े हो गए थे और कहने लगे थे, क्या कहा तूने? ये क्या कह रहा है तू? और कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे बेटे के बारे में बात कर रहा है? तुझे उससे इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है। तभी अमरेंद्र जी की बात सुनकर करिश्मा जी आगे आई थी और कहने लगी थी, पहले आप अमन की पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं ना। तभी अमरेंद्र जी गुस्से से करिश्मा को देखते हुए कहने लगे थे, तुम तो चुप ही करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें पहले दिन से ही अमित पसंद नहीं है, और शायद इसीलिए अब अमन भी अमित को पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि तुमने ही जरूर से उसके दिल में कुछ ना कुछ बात डाली होगी। अब जैसे ही अमरेंद्र जी ने ये कहा, करिश्मा जी काफी हैरान थी, वहीं तारापरी भी हैरान थी और सोचने लगी थी, वाकई पुत्र मोह कुछ ज्यादा ही है अमरेंद्र जी के दिमाग पर इस वक्त। लेकिन फिलहाल तभी अमन ने आगे कहना शुरू कर दिया था, पिताजी आप गलत समझ रहे हैं, ये अमित तो नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि ये काली शक्तियों का मालिक अमित है, जिसे जो कि काली शक्तियों के महागुरु, जो कि सफेद चिन्हतों के दुश्मन है, उनका दायां हाथ है।
अब जैसे ही अमन ने ये कहा, आप अमन के पिता पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगे थे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई काली शक्तियों का गुरु नहीं है, ये अमित है और ये एक नॉर्मल इंसान है, इसने मुझे खुद ये बात बताई। तभी अचानक अमन धीरे से आगे बढ़ा था और आगे बढ़कर उसने अपना सीधे हाथ का अंगूठा सीधा अमरेंद्र जी के माथे पर लगा दिया था और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा था। और देखते ही देखते धीरे धीरे सारी चीज, अब जैसे ही अमन ने ये कहा, आप अमन के पिता पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगे थे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई काली शक्तियों का गुरु नहीं है, ये अमित है और ये एक नॉर्मल इंसान है, इसने मुझे खुद ये बात बताई। तभी अचानक अमन धीरे से आगे बढ़ा था और आगे बढ़कर उसने अपना सीधे हाथ का अंगूठा सीधा अमरेंद्र जी के माथे पर लगा दिया था और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा था। और देखते ही देखते धीरे धीरे सारी चीज, आज तक अमित ने जितने भी काले कारनामे किए थे, इतना ही नहीं, प्रेमा के साथ उसने जंगल में बलात्कार किया था और किस तरह से उसने मल्लिका के जिस्में एक काले साया का प्रवेश करवा रखा है, जिससे मल्लिका की उम्र पूरी तरह से छिप चुकी थी, इतना ही नहीं, उसने अमन को मारने के लिए आज तक क्या कुछ नहीं किया है, कितनी उसने बिच्छू भेजे, छिपकली भेजी और अपने दानव भेजे, ये सारी चीज अब एक एक करके अमरेंद्र जी की आंखों के सामने आने लगी थी। अमरेंद्र जी का तो हैरानी के बारे में बुरा हाल हो चुका था, वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। वो बेटा जिसको उसे मान सम्मान देने लगे थे, उनका वो बेटा इस तरह से उसी की आंखों के सामने इतना बड़ा झूठ बोलेगा और काली शक्तियों का वो मालिक निकलेगा, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी अमरेंद्र जी ने तुरंत अपना हाथ अमन का हाथ अपने माथे पर से हटा दिया था और गुस्से से चीखने लगे थे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अमित मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे सकता है। वहीं अमित अब समझ चुका था कि अब उसका भांडा फूट चुका है और अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, अगर अब टाइम है तो आमने सामने की लड़ाई का टाइम है, इस तरह से वो छुपकर और देर नहीं कर सकता है। और अच्छा हुआ सारी सच्चाई अमन की आंखों के सामने आ गई, क्योंकि वो एक पल के लिए भी अब अमन को नहीं रोकने वाले थे, वैसे भी वो अब अमन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था, इसीलिए अचानक अमित वहां पर जोरों से हंसने लगा था और कहने लगा था, अमन अमन, मेरे प्यारे दोस्त अमन, बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हें बेवकूफ पर बेवकूफ बनाता हूं आ रहा हूं और तुम हो बनते चले आ रहे हो, लेकिन तुमने आज तक उफ तक नहीं बोला है, वाकई तुम मेरे सबसे प्यारे और अच्छे दोस्त हो, बहुत पसंद करता हूं मैं तुम्हें, इसीलिए तो मैं तुम्हारा जिस्मानी रिश्ता अपने इस काले साए मल्लिका के साथ करवाना चाहता था, ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए गुमनामों की जिंदगी जियो, और तुम्हारी इस खूबसूरत बीवी तारा के साथ मैं मजे करूं और इस बंगले पर पूरा का पूरा अधिकार जमा लूं। अब जैसे ही अचानक अमित ने इस तरह से बोलते हुए तारा का नाम लिया, अब तारा का तो गुस्सा हो ही गई, लेकिन अमन के तो शरीर में खून जम गया था। उसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी बीवी तारा के लिए वो किसी भी तरह के कोई गलत शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन यहां तो अमित ने सीधे सीधे उसी के सामने उसकी बीवी के साथ मजे करने की बात कही थी, तो अब अमित को बहुत गुस्सा आया था। उसने खींचकर एक चांटा काली शक्तियों के मालिक अमित के मुंह पर दे मारा था। वहीं मलिका जैसे ही गुस्से से अमन का गला दबाने के लिए आगे बढ़ी, अमन ने एक चांटा उसके मुंह पर भी खींचकर दे मारा था और दोनों के दोनों दूर जा गिरे थे। और तभी अचानक मलिका गुस्से से एक बार फिर भर उठी थी और इस बार वो तारा परी की ओर बढ़ने लगी थी। उसने सोच लिया था कि वो अमन का तो कोई कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन वो इस इंसानी लड़की यानी कि इस लड़की बालिका की मदद से जरूर कुछ ना कुछ कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए उसने सीधा सीधा तारा परी पर हमला करने की कोशिश की थी। वहीं रित परी, जो कि गायब होकर उस वक्त तारा परी के बेहद करीब थी, वो मलिका को इस तरह से गुस्से से तारा की ओर बढ़ते हुए देख चुकी थी। और इससे पहले कि वो तारा परी को छू पाती, तभी रित परी ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए बिजली का झटका देने वाली शक्ति का प्रयोग मलिका पर कर दिया था। और मलिका तारा परी को छूने से पहले ही बहुत दूर जा गिरी थी। और जैसे ही अचानक मलिका दूर जा गिरी, तारा परी जोरों से हंसने लगी थी। साथ ही साथ अमन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। और वहीं अब अमित गुस्से से आग बबूला हो उठा था, क्योंकि वो मलिका भले ही बदसूरत बुढ़िया थी, लेकिन वो मलिका को काफी पसंद करता था। कितनी ही बार उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया करता था। इतना ही नहीं, बिल्कुल नग्न बदन उसे अपने पास सुलाया करता था, जिसकी वजह से उसके दिल में मलिका के लिए जज्बात थे। तो वो मलिका की ऐसी हालत नहीं देख सकता था, इसीलिए वो गुस्से से अमन की ओर बढ़ा था और कहने लगा था, अब जब तुम हमारा सारा सच जान ही चुके हो, तो अब छुपे रहने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा, और तेरी जान लेने के बाद मैं तुम्हारी बीवी को अपना बनाऊंगा, और साथ ही साथ तुम्हारे जिन्नातों के वंशज का अंत कर दूंगा। जैसे ही अमित ने इस तरह की बातें करना शुरू किया, अमन का और तारा परी दोनों का ही खून खौल गया था। क्या तारा परी और अमन दोनों मिलकर आज तक सतमालिक अमित का अंत कर देंगे? और क्या तारा के परी होने का राज अमन के सामने आ जाएगा? क्या अमित के अंत के बाद एक और नई मुसीबत कर रही है तारा का इंतजार? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।